नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आखिरकार अपने घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा किया। सोमवार शाम नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया। अब नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया है। CAA दिसंबर 2019 के दोनों सदनों से पास हो गया था। इसके बाद 4 साल तक मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इसे देश भर में लागू कर दिया गया। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी, लेकिन दो राज्यों केरल और पश्चिम बंगाल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इन दोनों राज्यों का कहना है कि अगर CAA और NRE के जरिए किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन कानून और NRC के जरिए किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका कड़ा विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बंगाल है, यहाँ हम CAA को लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल के CM पिनाराई विजयन ने कहा कि हमारी सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि हम CAA को यहाँ लागू नहीं होने देंगे, जो मुस्लिम लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। ये समझने से पहले संविधान के कुछ अहम प्रावधानों को समझ लेते हैं। असल में संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। संघ सूची में वो मामले आते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। इसमें रक्षा, विदेश, जनगणना और रेल व नागरिकता जैसे 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के पास होता है। उसमें पुलिस, कोर्ट, स्वास्थ्य, सड़क जैसे 61 विषय शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट मंगलवार यानी आज जारी हो सकती है। सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने 39 और बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। बीजेपी फिलहाल इन 4 राज्यों में से 3 में से सत्ता से बाहर है और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में दिग्गज नामों का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में बीजेपी ने 51 नामों का ऐलान किया था। इनमें से पार्टी ने सभी सीटिंग सांसदों के टिकट रिपीट किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर नए मानक स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चीन बदल रहा है उसी तरह भारत में भी कूटनीतिक स्तर पर भारत भी बदलाव कर रहा है। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि हमने अतीत की एक गलती स्वीकार की जब भारत ने यूरोप के कुछ देशों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रुसेल्स के एकीकरण को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जयशंकर ने कहा कि जैसे जैसे रणनीतिक रूप से भारत जागृत होता जा रहा है, साझेदारी की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जापान के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जापान भले ही तकनीकी तौर पर सक्षम है, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से खुद को संयमित कर लिया है। ऑटो सेक्टर, मेट्रो रेल और अब बुलेट ट्रेन में जापान के साथ सहयोग बताते हुए जयशंकर ने कहा कि हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी संबंधों के चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते ज़्यादा मजबूत हुए हैं और कई मुद्दे आसानी से हल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में आप पार पाने और अपनी बात रखने में सक्षम होते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।